तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है, शर्त इतनी है कि सोने का तराजू रख ले। जी हाँ, ये शब्द है मेरे नहीं, राहत इंदौरी साहब के, जो आज हमारे साथ बात कर रहे हैं। राहत जी, SBS हिंदी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या लिखने पे मजबूर कर दिया आपको ये, किसका झूठ है और किसका सोने का तराजू?
वक्त का झूठ है और वक्त का तो सोने का तराजू है।
क्या बात है।
माहौल और अहद और पीरियड और शायर के आसपास जो कुछ हवाएं चलती हैं, जैसा माहौल होता है
जी
वही उसे अल्फाज देता है, वही उसे सोच देता है।
जी राज जी, आपकी कविताओं और शायरी के लिए और खास तौर पे गीतों के लिए कहा जाता है कि विजुअल इमेजरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपका जो फोर्टे माना जाता है वो विजुअलाइजेशन है, शब्दों को जिस तरीके से आप निहारते हैं। और कहा जाता है कि आर्ट जो है वो मिरर होना चाहिए सोसाइटी का। कितना सहमत होंगे आप इससे?
यकीनन शायरी का तो मैं समझता हूँ कि पहली पहली शर्त यही होती है कि अगर वो हमारे यहाँ तो हिंदी साहित्य में कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है,
जी
शायरी आईना है समाज का। अगर मैं भी मतलब नीरू की तरह बांसुरी बजा रहा हूँ और शहर जल रहा है
जी
तो मेरा ख्याल है मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ, मुंह चुरा रहा हूँ।
जी
तो मैं जो देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, जो आग आस पास है वो शायरी में आती है, वो लफ्जों में आ जाती है।
आप ही की दो लाइनों में से फिर चुराता हूँ थोड़े से शब्द की, जो चुप रहते हैं कुछ, आपने लिखा था कि वो तो सन्नाटा है लेकिन आंखों में जो दिखता है वो तूफान है।
जी 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 मेरा ही शेर है ये, जो जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं।
क्या बात है। आप एकेडमिक हैं, लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने डॉक्टरेट की है उर्दू लिटरेचर में,
जी जी जी
और फिर शायरी का सफर तो समझ में आता है कि जो, लेकिन बॉलीवुड जाने का क्या हुआ?
तो एक तरीके से इत्तेफाक ही है हमारे हिंदुस्तान के हिंदी सिनेमा में के बारे में, ये बहुत मशहूर है
जी
कि लोग वहां पर इतना स्ट्रगल करते हैं कि जूते चप्पल गिर जाते हैं।
जी
लेकिन मुझे, मैं उस जमाने में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था
जी
और मुझे वहां से खुद बुलाया गया गुलशन कुमार जी ने।
जी
गुलशन कुमार एक फिल्म बना रहे थे, उस फिल्म का नाम था शबनम।
जी
उसमें एक मेरी पहले की लिखी हुई दो लाइनें थी जो उनके सिचुएशन पर पूरी खरी उतर रही थी। वो बिल्कुल वही चाहते थे,
जी
हील अच्छा है, कंवल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है।
वाह
तो गुलशन जी ने मुझे अप्रोच किया, मेरे कॉलेज तक किसी को पहुंचाया
जी
और उन्होंने कहा कि आप हमसे आकर मिलने, हमारी के लिए लिखना है। हिंदी सिनेमा में मुझे कोई ज्यादा दिलचस्पी कभी रही नहीं थी,
जी
तो मैं टाल रहा था किसी तरीके से। मैंने उन्हें भी किसी एक बहाना बनाया, साहब के पंजाब के दौरे पे जा रहा हूँ, 8-10 दिन लगेंगे मुझे,
जी
उसके बाद मैं आऊंगा। तो वो समझ गया कि शायद ये काम करना नहीं चाहता, तो उन्होंने फिर ये मुझे ऑफर दिया कि आप जितने भी प्रोग्राम पंजाब के हैं या कहीं के भी हैं वो सब छोड़ दीजिए और पहली फ्लाइट लेके बम्बई आ जाइए
जी
और हम जितना भी आपका नुकसान होगा वो हम दे देंगे।
तो जो आपका जो
मैं
जी सफर रहा एकेडमिया से बॉलीवुड में, खुश हैं आप उससे?
खुश क्या, देखिए जिस जमाने में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी
जी
बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री, उस जमाने में कुछ शोहरत की भी थोड़ी बहुत तलब थी, ख्वाहिश थी, कुछ
जी
थोड़े बहुत इकोनॉमिकली भी जरूरतें थी, आर्थिक जरूरतें थी।
जी
तो वो ये एक चांस लेने के लिए चला गया था कि देखते हैं अगर कुछ काम बनता है
जी
होगा तो ठीक है। तो कॉलेज से जो छुट्टियां लेकर एक एक हफ्ते की
जी
वहां चला गया था। लेकिन जो मरहूम गुलशन कुमार थे वो इतने ग्रेट आदमी, इतने शरीफ और नेक आदमी मुझे साबित हुए, और इतने कि उन्हें पहली मुलाकात में उनसे प्यार हो गया।
जी
और आपको हैरत होगी कि कोई आदमी को पहली मर्तबा बुलाए और सबसे बातचीत करे और सिर्फ 7 दिन वहां रुके और उसमें कोई 14 गाने वो रिकॉर्ड मुझे मेरे कर लिए। मुझे उन्होंने बताया अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक एल्बम उन्होंने फौरन रिकॉर्ड किया, उनका ही मेहमान रहा मैं उनके गेस्ट हाउस में,
जी
और एक आशियाना नाम से कैसेट उन्होंने रिकॉर्ड किया। सिर्फ 8वें दिन में वापिस आ गया था एक
जी
बहुत खासी मोटी रकम लेकर और बड़ी शोहरतें लेकर। तो
वाह
ये मुझे थोड़ा मतलब ये कि मुझे तजर्बा बहुत अच्छा रहा, इसलिए थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ गई। उसके बाद मेरी वहीं पर अनु मलिक से मुलाकात हुई, अनु से फिर मैं इतना अच्छा ट्यूनिंग हुआ एक दूसरे का
जी
उसके साथ फिर मैंने दर्जनों फिल्में की।
जी काफी गोविंदा वाली फिल्मों के गाने भी आप ही
जी
के
हाँ
थे।
जी हाँ जी हाँ जी जी
1990 का जो दशक था, जहाँ मुझे याद है खुद्दार और अलग अलग
बिल्कुल
फिल्मों
बिल्कुल
के।
बिल्कुल दुरुस्त गाना मेरा सुपर हिट गाना था, कोई मासूम नहीं है जी।
जी आपके गीतों में जो है, आपने सीरियस फिल्में जैसे कि सर
जी जी
और
जी
गोविंदा की जो मसाला फिल्में हैं उनके लिए गाने लिखे हैं,
जी
तो
जी
अगर मैं पूछूं कि जैसा आपने बताया कि दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ी आपकी बॉलीवुड में और आप एकेडमिक हैं, तो आज का राहत इंदौरी, अगर जवान राहत इंदौरी को कुछ कहना चाहे दो शब्द, तो क्या कहेंगे?
नहीं देखिए दोनों का हम मतलब ये कि तुलना तो कर ही नहीं सकते, मुआवजा कर ही नहीं सकते,
जी
इसलिए कि मैं जो कुछ लिखता हूँ अपने लिए,
जी
अपने अपने रीडर्स के लिए, अपने सामईन के लिए, वो उसका कोई मुआवजा किया ही नहीं जा सकता जो इंडस्ट्री में लिखा जाता है। जाहिर है सिनेमा के लिए जो लिखना पड़ता है वो उनकी सिचुएशन, उनकी कहानी, और सबसे बड़ा उनका बाजार,
जी
और बाजार का तकाजा जो होता है कि वो तो सिर्फ आजकल जिन लोगों के हाथ में फिल्म इंडस्ट्री है वो ये चाहते हैं कि अगर हम 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो 3 महीने के अंदर ये 150 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए।
बिल्कुल
तो उसमें शायरी और तखलीक और क्रिएशन वो तो खत्म हो गया। बिमल राय का जमाना भूल जाइए, राज कपूर साहब का जमाना भूल जाइए, गुरुदत्त साहब का जमाना भूल जाइए,
बिल्कुल
शंकर जयकिशन नहीं रहे, शैलेंद्र नहीं रहे, हसरत नहीं रहे, शायर नहीं रहे, तो अब तो वहां पर सिर्फ ये है कि जिसको कुछ भी नहीं याद है वो जाके वो गीतकार हो जाता है।
सही कहा
और जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जो म्यूजिक कंपोजर हैं,
जी
जिनको नोटेशन मालूम है, सारे गामा पादा निजा,
जी
वो खुद शायर हैं। वहां पर हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि हिंदी सिनेमा में सबसे कीमती चीज हुआ करती थी शब्द,
जी
और वो शब्द ही वहां पर मर चुका है। अब वो गाना लिखा जाता है डिंका डिका डिंका डिका डिंका डिका और सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो ये मैंने जितना काम किया बहुत कम किया, कोई ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन कोशिश की कि अगर पूरी पोएट्री ना हो, पूरी शायरी ना हो, तो शायरी की खुशबू जरूर हो, कम फ्लेवर कम से कम ऐसा लगे कि ये पोएट्री जैसी कोई चीज है।
क्या बात
बस
कही
यही मैंने कोशिश की।
जी, आपने बात की खुशबू की, तो उर्दू जो जबान है उसकी भी एक खुशबू अलग है
यकीनन देखिए
जिस।
आप उर्दू जो दिल्ली से पैदा हुई
जी
या अवध के आसपास पैदा हुई, वो चलते चलते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई, ये खुशबू का ही झोंका है।
बिल्कुल, जैसे कि अब मेरे नाना जी या दादा जी वो इसे बोलचाल की भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे उर्दू को, दिल्ली में रहे, पंजाब में रहे,
जी जी
लेकिन कहीं पर आज एक अचानक से डिबेट आ गया है कि उर्दू तो मुसलमान की भाषा है।
ये अफसोस है, ये सियासी जुमला है
जी
और ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा राइज है और अफसोसनाक है।
जी
लेकिन मैं मेरे नजदीक एक बात और भी मैं महसूस करता हूँ कि या जहां तक सियासी प्रोडक्शन का सवाल होता है किसी जुबान का भी,
जी
वो हमारी किसी भी जुबान को नहीं है, हिंदी वालों का भी वही प्रॉब्लम है जो उर्दू वालों का है, जो उर्दू वालों का वही गुजराती वालों का है, जो
बिल्कुल
गुजराती वालों का वही मराठी वालों का है। जितनी लैंग्वेजेस हैं
जी
उन्होंने उठाकर दूसरे नंबर पर रख दी, दूसरे खाने में रख दी है।
जी
तो सियासत ने लाकर सर पर थोप दी है अंग्रेजी, जो जिसके बगैर कुछ काम सारी दुनिया में नहीं चल रहा है। हमें यकीनन कि वो एक जरूरत की जुबान है, उसे होना चाहिए,
जी
लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो हिंदुस्तानी जुबान है
जी
उनकी सरपरस्ती करना सरकार का पहला फर्ज है, मैं ऐसा समझता हूँ।
जी और जैसा कि सरपरस्ती की बात की, तो आप अपने लेवल पे भी उसको कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपका मुशायरे होते हैं, आप बाकी विदेशों में कई और जगह पे भी परफॉर्म कर चुके हैं, तो
जी
किस
जी
तरीके का रिसेप्शन मिलता है खास तौर पे गीतकार को और शायरी को?
देखिए इसमें चाहे हिंदुस्तान से मेरे अलावा भी बहुत से लोग जाते हैं,
जी
हिंदी मंचों पर भी, उर्दू मंचों पर भी, यूएसए वगैरह में काफी ज्यादा इसका चलन हो बढ़ गया मुशायरों का, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ही होते हैं।
जी
ये इस जुबान को हम अंग्रेजों ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में हमारे सर पे ला के रख दी अंग्रेजी जुबान, उस तरीके से हम हिंदी को या उर्दू को ले जाकर उन तक पहुंचा नहीं पाए। हालांकि कई यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका में तो कई यूनिवर्सिटीज में उर्दू पढ़ाई जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, लेकिन इतनी मकबूलियत नहीं हो पा रही है। इसमें ये है कि वहां की जो सियासत है उसे दूसरी जुबानों में कोई दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी हमें अंग्रेजी जुबान में।
जी राहत जी, चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए दो शब्द।
मुझे बहुत खुशी हुई, मैं हिंदुस्तान की जुबान ही लेकर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तहजीबें, हिंदुस्तान की खुशबू, हिंदुस्तान की मोहब्बतें, हिंदुस्तान की यादें और हिंदुस्तान के लोगों की मोहब्बतें लेकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से ये जुबानें जितनी रोशन कर सकती हैं सारी दुनिया को, मैं समझता हूँ कोई इससे बड़ा कोई जरिया नहीं है कि जिस जुबान के, चाहे मीडिया कुछ भी हो, मीडियम इसका कुछ भी हो, मीडिया का कोई भी रोक हो, मैं समझता हूँ जुबानें मोहब्बतों का बड़ा कारोबार काम कर सकती हैं।
राहत जी, SBS हिंदी में बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तुमसा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद।